हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका कोल रेडियो पर। मैं हूं भावना जोशी और आज के पॉडकास्ट का विषय है एक कुशल राजनयिक बिस्मार्क ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजे गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक ऐसा नेता जिन्होंने भारत को एकजुट करने का सपना देखा और उसे साकार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। उनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1857 को गुजरात के नाडियाड शहर में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे ग्रामीण जीवन से जुड़े रहे, जहां सादगी और मेहनत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। उनके पिता का नाम झावेर भाई था, जो एक किसान थे, और माता लाडबा देवी, जिन्होंने उन्हें संस्कारों और दृढ़ता की शिक्षा दी। अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा की, तो उनका प्रमुख स्रोत था स्वाध्याय यानी आत्म अध्ययन। इसके अलावा उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा करमसाद के प्राथमिक विद्यालय में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई पेटलाद के हाई स्कूल में की। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। मात्र 16 साल की आयु में उनका विवाह झावेर बेन पटेल से हो गया और इसके बाद साल 1897 में 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने 10वीं कक्षा पास की। वल्लभ भाई एक साधारण लेकिन अत्यंत मेहनती छात्र थे। उन्होंने शिक्षा के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका यह संघर्ष ही आगे चलकर उनके दृढ़ निश्चय और नेतृत्व क्षमता की नींव बना। उनके समुदाय के लोग अक्सर उनका मजाक बनाया करते थे एवं उनकी बुद्धि पर सवाल उठाते थे। वे कहा करते थे कि पटेल जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, पर वे मेहनत करते रहे और कभी भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया। कड़ी मेहनत और वर्षों की बचत के बाद सन 1910 में वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने मिडिल टेंपल से कानून की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा पूरी कर जब वे भारत लौटे तो अहमदाबाद में उन्होंने एक कुशल और प्रतिष्ठित वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई। यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की नींव रखी गई, जो आगे चलकर उन्हें देश की राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका तक ले गया। सरदार पटेल की एक खास बात थी कि वे अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों से ही कर दी थी। नाडियाद में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को बाध्य करते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदें। वल्लभ भाई ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। 5 से 6 दिन तक स्कूल बंद रहा। अंत में जीत सरदार की हुई और अध्यापकों की ओर से पुस्तकें बेचने की प्रथा बंद हुई। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उनके द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष सन 1918 में दिया गया, जब गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने करों से राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेड़ा में अर्पित नहीं कर सकते थे, इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दे दी गई। बारदोली सत्याग्रह सन 1928 में गुजरात के बारदोली जिले में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। यह औपनिवेशिक सरकार द्वारा भू राजस्व में की गई अन्यायपूर्ण वृद्धि के विरोध में था। पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी और पटेल को महिला नेताओं द्वारा सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो उनके नाम का स्थायी हिस्सा बन गई। साथ ही उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और कई बार कारावास का दंड भी भुगता। सन 1931 में उन्होंने कांग्रेस के 46वें अधिवेशन, जिसे कराची अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी अध्यक्षता की, जिसमें गांधी इरविन समझौते पर चर्चा हुई। सरदार पटेल की मुख्य भूमिका समझौते को अंतिम रूप देने के बाद कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर समझौते को मंजूरी दिलाना था, जहां समझौते को स्वीकृत किया गया। इसके अलावा समझौता होने के बाद पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट किया। संविधान सभा में उन्होंने मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं अपरिवर्जित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता की। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश प्रांतीय समितियां उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त मानती थी। वे देश के पहले प्रधानमंत्री होते, परंतु वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से पीछे हट गए और इस तरह जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बाद में पटेल को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया। देश की स्वतंत्रता के पश्चात वे उप प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम गृह, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों, राज्यों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। उनकी महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई सन 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की नींव रखी और देश की नौकरशाही को सुदृढ़ किया। इसी कारण से उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत कहा गया। 21 अप्रैल को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस उनके 1947 के भाषण की स्मृति में ही मनाया जाता है। 15 दिसंबर सन 1950 को बंबई, वर्तमान मुंबई में हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया। वर्ष 1950 की शुरुआत से ही उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। दिसंबर में उन्हें गंभीर हृदयाघात आया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका देहांत हो गया। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महान नेता और भारत की एकता के शिल्पकार को खो दिया। बताया जाता है कि जिस समय उनका निधन हुआ, उस समय उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपये मौजूद थे। उनके निधन के 41 वर्ष बाद सन 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य पर हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि विविधताओं में ही हमारी शक्ति है और देश की एकता को बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस भारत का सपना देखा था, एकीकृत, सशक्त और लोकतांत्रिक राष्ट्र, वह आज हमारे सामने है। उनकी दूरदृष्टि, नेतृत्व और निष्ठा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन प्रेरणा का सफर अभी जारी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार के साथ। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और सकारात्मक रहिए। मैं हूँ भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।